एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम सब मिलकर एक बहुत ही दिलचस्प और जरूरी विषय पर बात करेंगे।
हाँ बिल्कुल, हम गोता लगा रहे हैं सर बर्नार्ड क्रिक के विचारों में,
और खास तौर पर लोकतंत्र पर उनके बहुत ही कह सकते हैं जमीनी नजरिए पर। उनकी दो किताबें हैं, डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी ए वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन,
और ये आज के समय में बहुत ज्यादा प्रासंगिक है ना?
हाँ बिल्कुल। मतलब लोकतंत्र शब्द तो हर कोई इस्तेमाल करता है, लेकिन अक्सर सही मतलब समझे बिना।
और देखिए ना, दुनिया भर में लोकतंत्र कैसी कैसी चुनौतियों से जूझ रहा है।
हाँ, वो लोक लुभावनवाद, लोगों की राजनीति से बढ़ती दूरी।
बिल्कुल, ऐसे में क्रिक की जो साफ और यथार्थवादी सोच है उसे समझना तो और भी जरूरी हो जाता है।
सही कहा। ऐसा लगता है जैसे क्रिक हमें लोकतंत्र की कोई परफेक्ट आदर्श तस्वीर के पीछे भागने से रोकते हैं।
हाँ, और उसकी असलियत दिखाते हैं कि भाई ये एक प्रक्रिया है लगातार चलने वाली।
थोड़ी मुश्किल, कभी कभी शोरगुल वाली भी।
बिल्कुल, पर शायद यही सबसे अच्छा तरीका है हमारे पास समाज को जोड़े रखने का।
तो चलिए इसी सोच को थोड़ा और खोलते हैं। पहले सर बर्नार्ड क्रिक के बारे में कुछ जान लेते हैं।
हाँ, सर बर्नार्ड क्रिक वो 1929 में जन्मे, 2008 में उनका देहांत हुआ। ब्रिटेन के बहुत ही माने हुए राजनीतिक विचारक थे, प्रोफेसर थे।
कहाँ पढ़ाते थे वो?
उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, बर्गबेक, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन जैसी बड़ी जगहों पर पढ़ाया। मतलब अकादमिक दुनिया में उनका बहुत नाम था।
लेकिन सिर्फ किताबी प्रोफेसर नहीं थे वो, है ना?
नहीं, यही तो खास बात है, वो सार्वजनिक जीवन में भी काफी सक्रिय थे।
अच्छा,
जैसे
जैसे उन्होंने ब्रिटिश सरकार को नागरिकता शिक्षा यानी सिविक एजुकेशन पे सलाह दी थी, स्कूलों में नागरिकता कैसे पढ़ाई जाए इस पर।
अरे वाह, और वो जॉर्ज ऑरवेल वाली बात। हाँ, उन्होंने जॉर्ज ऑरवेल की जीवनी भी लिखी। ऑरवेल जो खुद सत्ता और सच के सवालों से जूझते रहे, ये कनेक्शन भी दिलचस्प है।
उनकी सबसे मशहूर किताब कौन सी मानी जाती है?
उनकी 1962 की किताब इन डिफेंस ऑफ पॉलिटिक्स, मतलब राजनीति के बचाव में।
इसमें क्या खास था?
इसमें उन्होंने राजनीति को बहुत अलग ढंग से देखा, कहा कि राजनीति कोई गंदी चीज नहीं बल्कि जरूरी काम है।
क्या काम?
क्या काम? अलग अलग हितों, अलग अलग विचारों वाले लोगों के बीच तालमेल बिठाने की कला, एक तरह से सामंजस्य बनाने की गतिविधि।
अच्छा, मतलब राजनीति को गाली देने के बजाय उसे समझने की कोशिश।
बिल्कुल, और यही प्रैक्टिकल सोच, यही यथार्थवाद उनके लोकतंत्र के विश्लेषण में भी दिखता है। इसीलिए लोग उन्हें यथार्थवादी आदर्शवादी कहते हैं।
मतलब
आदर्श तो है पर पैर जमीन पर है।
एकदम सही। तो फिर क्रिक की इन किताबों का निचोड़ क्या है? लोकतंत्र के बारे में वो सबसे अहम बात क्या कहते हैं?
सबसे पहली और बुनियादी बात, उनके लिए लोकतंत्र कोई मंजिल नहीं है, कोई परफेक्ट सिस्टम नहीं जहां सब ठीक हो जाता है।
तो फिर क्या है?
ये शासन चलाने का, फैसले लेने का एक तरीका है, एक विधि, एक प्रक्रिया।
प्रक्रिया।
हाँ, और ये प्रक्रिया अक्सर थोड़ी कह सकते हैं मेसी होती है, जटिल, थोड़ी अव्यवस्थित, लेकिन लगातार चलती रहती है।
और वो जो आम धारणा है कि लोकतंत्र मतलब बहुमत का राज,
क्रिक उसे सीधी चुनौती देते हैं। वो कहते हैं लोकतंत्र सिर्फ ये नहीं कि 51% लोग जो चाहें वो हो जाए, या कोई एक जन इच्छा लागू हो जाए।
तो फिर असली ताकत कहाँ है?
असली ताकत है असहमतियों को, झगड़ों को शांति से सुलझाने की क्षमता में।
अच्छा।
हाँ, और सत्ता पर सवाल उठाने, उसे जवाबदेह बनाने के तरीकों में, और समाज में बिना हिंसा के बदलाव लाने की गुंजाइश पैदा करने में।
तो वो एक तरह से लोकतंत्र पर चढ़ी आदर्शवाद की चाशनी हटा रहे हैं।
बिल्कुल, और जो बयानबाजी होती है उसे भी। वो चाहते हैं हम नागरिक इसे इसकी कमियों के साथ समझें
और फिर भी इसकी कदर करें।
हाँ, क्योंकि उनके लिए लोकतंत्र क्या है? असल में राजनीति करने का ही एक तरीका,
यानी अलग अलग सोच वाले लोगों का मिलकर रास्ता निकालना।
बिल्कुल,
सार्वजनिक रूप से।
चलिए इस विचार को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। वो लोकतंत्र को परिभाषित कैसे करते हैं? आपने कहा एक विधि के रूप में।
हाँ, मुख्य रूप से एक विधि, एक तरीका। वो प्रक्रियात्मक लोकतंत्र पे ज्यादा जोर देते हैं, चुनाव कैसे हों, संसद कैसे चले, कानून कैसे बने।
और वास्तविक लोकतंत्र मतलब नीतियों का नतीजा,
वो भी जरूरी है, पर क्रिक का मानना है कि अगर प्रक्रिया सही है, पारदर्शी है, तो नतीजे भी शायद बेहतर होंगे। कम से कम प्रक्रिया पर ज्यादा भरोसा किया जा सकता है।
और वो ये भी कहते हैं कि लोकतंत्र शब्द बड़ा लचीला है।
हाँ, बहुत। इतिहास में देखिए कितने अलग अलग शासनों ने खुद को लोकतांत्रिक कहा है।
सही बात है,
तो क्रिक कहते हैं परिभाषा में मत उलझो, ये देखो कि ये काम कैसे करता है।
और मुख्य काम क्या है? वही समाज में जो ढेरों अलग अलग हित हैं, विचार हैं, समूह हैं,
जो अक्सर टकराते भी हैं,
हाँ, उनके बीच सार्वजनिक रूप से नियमों के दायरे में बातचीत से तालमेल बिठाना। तो लोकतंत्र राजनीति इज इक्वल टू तालमेल बिठाना।
दिलचस्प। अच्छा, इसके इतिहास के बारे में वो क्या बताते हैं, एथेंस वगैरह?
हाँ, वो एथेंस का जिक्र करते हैं जहाँ से जड़ें मानी जाती हैं, पर एक चेतावनी के साथ।
क्या चेतावनी?
कि एथेंस का जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र था, जहाँ नागरिक सीधे वोट करते थे,
वो आज के लिए कोई मॉडल नहीं है।
बिल्कुल नहीं, वो एक छोटे शहर के लिए था, उसमें औरतें, गुलाम, बाहरी लोग शामिल नहीं थे, बहुत सीमित था।
और प्लेटो जैसे दार्शनिकों ने तो आलोचना भी की थी।
हाँ, कि ये भीड़ का शासन बन सकता है, अज्ञानियों का।
एथेंस के बाद
फिर वो रोमन गणराज्य का महत्व बताते हैं। वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं था, बल्कि एक मिलीजुली सरकार थी।
मिलीजुली सरकार मतलब?
उसमें राजा जैसे अधिकारी थे, अमीरों की सभा सीनेट थी, आम लोगों की भी सभाएं थी।
अच्छा, इससे क्या मिला हमें?
यहाँ से सत्ता के बंटवारे का विचार आया, नियंत्रण और संतुलन यानी चेक्स एंड बैलेंसेस, कानून का राज।
मकसद सिर्फ जनता को ताकत देना नहीं था?
नहीं, मकसद ये भी था कि कोई एक गुट, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो या कोई नेता, वो तानाशाना बन जाए।
ये विचार तो बाद में बहुत प्रभावशाली हुए।
हाँ, खासकर अमेरिका के संविधान बनाने वालों पर। वो एथेंस वाले सीधे लोकतंत्र से थोड़ा डरते थे।
और फिर आया आधुनिक प्रतिनिधि लोकतंत्र।
हाँ, जो बड़े बड़े देशों के लिए एक समाधान बना, जहाँ करोड़ों लोग एक साथ बैठकर तो फैसला ले नहीं सकते।
तो हम प्रतिनिधि चुनते हैं,
चुनाव, पार्टियां, संसद।
बिल्कुल। और यहीं क्रिक एक बड़ा सवाल उठाते हैं।
क्या सवाल?
कि ये जो चुनाव प्रतिनिधि है, उसकी भूमिका क्या है? क्या वो सिर्फ एक डाकिया है जो वोटरों का संदेश जस का तस पहुंचा दे,
जिसे डेलीगेट कहते हैं?
हाँ, या फिर वो एक ट्रस्टी है जिसे अपने विवेक, अपनी समझ से जनता के भले के लिए फैसले लेने चाहिए, भले वो फैसले तुरंत लोकप्रिय ना हो।
बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। इसने लोकतंत्र को ज्यादा अप्रत्यक्ष बना दिया, संस्थाओं पर निर्भर बना दिया।
तो ये जो लोकतंत्र की प्रक्रिया है, ये चलती कैसे? मतलब इसे चलाने के लिए कुछ ढांचे, कुछ नियम तो चाहिए ना?
बिल्कुल चाहिए। और क्रिक संस्थाओं के डिजाइन पर बहुत बहुत जोर देते हैं।
किन संस्थाओं पर?
चुनाव कैसे होते हैं, निष्पक्ष है या नहीं, संसद कैसे काम करती है, अदालतें कितनी आज़ाद हैं, मीडिया कितना स्वतंत्र है, विपक्ष की क्या भूमिका है, नागरिक संगठन कितने मजबूत हैं।
ये सब मिलकर तय करते हैं कि लोकतंत्र कितना स्वस्थ है।
हाँ, और खास तौर पर नियंत्रण और संतुलन, चेक्स एंड बैलेंसेस, यानी सरकार के अलग अलग अंग एक दूसरे पर नजर रखें,
ताकि सत्ता एक जगह जमा ना हो।
बिल्कुल, ये लोकतंत्र के लिए सांस लेने जैसा है।
अच्छा, और समाज और अर्थव्यवस्था के बारे में क्रिक क्या सोचते हैं? क्या लोकतंत्र के लिए पूंजीवाद जरूरी है?
वो इस सीधी लाइन पर सवाल उठाते हैं। ऐसा नहीं मानते कि दोनों हमेशा साथ चलते हैं या एक दूसरे के लिए जरूरी हैं।
तो फिर
वो अरस्तु को याद करते हैं, कहते हैं कि अगर समाज में बहुत ज्यादा अमीर और बहुत ज्यादा गरीब होंगे तो अस्थिरता बढ़ेगी।
तो एक बड़ा मध्यम वर्ग भीतर है।
हाँ, एक स्थिर और बड़ा मध्यम वर्ग लोकतंत्र के लिए ज्यादा अनुकूल होता है।
और नागरिक समाज यानी एनजीओ, मीडिया वगैरह?
वो बहुत जरूरी है। क्रिक कहते हैं एक जीवंत नागरिक समाज होना चाहिए जो सरकार के कंट्रोल से बाहर हो
और खुलकर अपनी बात रख सके, सरकार पर सवाल उठा सके।
बिल्कुल, ये लोकतंत्र को जिंदा रखता है।
चलिए अब उन चुनौतियों पर आते हैं जिनका सामना लोकतंत्र करता है। राष्ट्रवाद और लोकतंत्र का क्या रिश्ता है?
ये बड़ा जटिल रिश्ता है। क्रिक कहते हैं कभी कभी राष्ट्रवाद लोकतंत्र का साथी होता है,
जैसे आजादी की लड़ाई में।
हाँ, लेकिन जब राष्ट्रवाद संकुरा हो जाता है,
मतलब
जब वो सिर्फ एक धर्म, एक जाति, एक भाषा की बात करे, दूसरों को बाहरी समझें, उन्हें निकालने की बात करे,
तब वो लोकतंत्र का दुश्मन बन जाता है।
हाँ, तब वो अल्पसंख्यकों के अधिकारों को कुचलता है।
और आज की क्या चुनौतियां देखते हैं क्रिक?
वो राजनीति में पैसे के बढ़ते असर की बात करते हैं, मीडिया और टेक्नोलॉजी कैसे लोगों की सोच को बदल रही है उसकी बात करते हैं, वैश्वीकरण की मुश्किलें भी,
और वो लोक लुभावनावाद यानी पॉपुलिज्म,
उस पर खास ध्यान देते हैं। ये वो स्थिति है जब कोई नेता दावा करता है कि सिर्फ वही असली जनता की आवाज है,
जो स्थापित नियम कायदे हैं, संस्थाएं हैं,
उन्हें बेकार बताता है, संसद, अदालतें, इनको कमजोर करने की कोशिश करता है,
और अक्सर किसी अल्पसंख्यक समूह को निशाना बनाता है।
हाँ, उन्हें सारी समस्याओं के लिए जिम्मेदार ठहराता है और बातचीत समझौते की राजनीति को कमजोरी मानता है।
इसके अलावा और क्या खतरे हैं?
नागरिकों की उदासीनता, मतलब मुझे क्या लेना देना वाला रवैया ये बहुत खतरनाक है।
और वो तकनीकी अभिजाततावाद,
हाँ टेक्नोक्रेटिक एलिटिज्म, ये सोच के देश चलाना बहुत मुश्किल काम है, ये सिर्फ एक्सपर्ट्स का काम है, आम आदमी की इसमें क्या भूमिका।
तो लोकतंत्र को बाहरी और अंदरूनी दोनों तरह के दुश्मनों से खतरा है।
बिल्कुल, तानाशाही, विदेशी दखल बाहर से, तो अंदर से भ्रष्टाचार, ध्रुवीकरण और सबसे बढ़कर उदासीनता। सच में ये एक नाजुक पौधा है।
आखिर में क्रिक शिक्षा और नागरिकता पर बहुत जोर देते हैं ना?
हाँ बहुत ज्यादा, वो कहते हैं लोकतंत्र को सिर्फ वोटर नहीं चाहिए।
तो क्या चाहिए?
जानकार, सक्रिय और जिम्मेदार नागरिक चाहिए।
जिनके पास सिर्फ जानकारी ना हो?
नहीं, बल्कि सोचने समझने का हुनर हो, बहस करने की तमीज हो, अलग विचारों को सहने का सलीका हो।
तो नागरिक शिक्षा मतलब सिर्फ इतिहास भूगोल पढ़ाना नहीं?
बिल्कुल नहीं, उसमें क्रिटिकल थिंकिंग यानी आलोचनात्मक सोच विकसित करना शामिल है, दूसरों की बात सुनना, धैर्य रखना, समझौते के लिए तैयार रहना।
और ये सीखा हुआ व्यवहार है?
हाँ, क्रिक मानते हैं ये कोई प्राकृतिक चीज नहीं है, इसे सीखना पड़ता है और ये सीखना पूरी जिंदगी चलता है।
तो अगर हम इन सब बातों को समेटें तो क्रिक से क्या बड़े सबक मिलते हैं? पहला तो यही कि
लोकतंत्र एक प्रक्रिया है, मंजिल नहीं, एक सफर है।
हाँ, और ये सफर हमेशा आसान नहीं होता, शोर शराबा, असहमति, ये सब इसका हिस्सा है।
बिल्कुल, भारत की संसद या विधानसभा की बहसें ही देख लें, लगता है झगड़ा हो रहा है पर शायद यही प्रक्रिया है।
दूसरा सबक,
संघर्ष या असहमति से डरना नहीं, ये लोकतंत्र की विफलता नहीं बल्कि उसका हिस्सा है, बशर्ते उसे नियमों के दायरे में संभाला जाए।
और उन विचारधाराओं से सावधान रहना जो पूरी एकता या एक ही सच का दावा करती हैं।
हाँ, क्योंकि राजनीति का काम ही है अलग अलग हितों में तालमेल बिठाना, भारत जैसी विविधता वाली जगह में तो ये और भी जरूरी है।
असहमत होना सीखना बिना दुश्मन बने।
बिल्कुल, तीसरा सबक है संस्थाओं और नियमों का महत्व।
ये लोकतंत्र के पहिए हैं।
हाँ, सत्ता का बंटवारा, कानून का राज, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, ये सब जरूरी हैं।
स्वतंत्र न्यायपालिका, चुनाव आयोग, आजाद मीडिया,
ये सब सिर्फ नाम नहीं है, ये लोकतंत्र के गार्डरेल हैं, इन्हें बचाए रखना जरूरी है।
चौथा सबक, नागरिकों की भूमिका।
हाँ, सिर्फ नेता और संस्थाएं काफी नहीं, जागरूक सक्रिय नागरिक चाहिए,
जो सवाल पूछें, जानकारी रखें, वोट दें
और अलग विचारों को बर्दाश्त करें। उदासीनता लोकतंत्र के लिए दीमक की तरह है,
खासकर आज के सोशल मीडिया के जमाने में आलोचनात्मक सोच बहुत जरूरी है,
बहुत ज्यादा। और पांचवा सबक,
लोकतंत्र की नाजुकता।
हाँ, ये बहुत नाजुक है, इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, ये कोई गारंटी नहीं है कि हमेशा रहेगा,
इसे लगातार बचाना, सींचना और बदलना पड़ता है।
बिल्कुल, हमें अपने लोकतांत्रिक यात्रा को याद रखना चाहिए और इसे सहेजना सबकी जिम्मेदारी है।
क्रिक की कुछ पंक्तियां भी बहुत यादगार हैं, है ना, जो उनके विचारों का सार बताती हैं।
हाँ, एक तो ये कि लोकतंत्र सिर्फ शासन करने का तरीका नहीं बल्कि जीने का तरीका है।
गहरा विचार है, मतलब सिर्फ राजनीति नहीं, हमारे समाज के डीएनए में होना चाहिए।
हाँ, आपसी व्यवहार में, स्कूलों में, दफ्तरों में, ऐसी संस्कृति जहाँ अलग राय रखने वाले को दुश्मन ना समझे।
और वो दूसरी वाली, लोकतंत्र की कीमत शाश्वत सतर्कता नहीं बल्कि शाश्वत भागीदारी है,
ये भी बहुत दमदार है। सिर्फ चौकन्ना रहना काफी नहीं, लगातार शामिल होना पड़ेगा,
वोट देना, सवाल पूछना, बात रखना।
हाँ, लोकतंत्र दर्शकों का खेल नहीं, खिलाड़ियों का खेल है।
और अल्पसंख्यकों के बारे में,
लोकतंत्र बहुमत के शासन के बारे में नहीं बल्कि बहुमत के निर्णय लेने के ढांचे के भीतर अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के बारे में है।
मतलब बहुमत की तानाशाही से बचाओ।
हाँ, असली लोकतंत्र वही है जहाँ जीतने वाला हारने वाले के अधिकारों का भी सम्मान करे।
और राजनीति एक नैतिक काम है।
क्रेक यही मानते हैं, राजनीतिक गतिविधि एक प्रकार की नैतिक गतिविधि है, इसका मकसद है अलग अलग जरूरतों वाले लोगों को शांति से साथ रहने का रास्ता दिखाना।
और वो यथार्थवादी चेतावनी,
लोकतंत्र का मित्र यथार्थवादी होता है, इसका सबसे खतरनाक दुश्मन अक्सर वो सिद्धांतवादी होता है जो एक ही पूर्ण सत्य में विश्वास करता है।
मतलब समझौते की जरूरत,
कट्टर रवैया लोकतंत्र के लिए जहर है।
बिल्कुल, तो इन सब बातों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से क्या जुड़ाव है, क्या सीख सकते हैं हम?
पहली चीज, शायद राजनीतिक बहस और असहमति को देखने का नजरिया बदलें,
उसे सिर्फ शोर या खराबी ना समझें।
हाँ, हो सकता है ये एक स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी हो जहाँ अलग आवाजों को जगह मिल रही है।
दूसरा, नेताओं और मीडिया की भाषा को लेकर ज्यादा सतर्क रहें।
हाँ, वो लोक लुभावना संकेतों को पहचाने, क्या कोई असली जनता के नाम पर दूसरों को अनदेखा कर रहा है? क्या आसान समाधान का वादा कर रहा है?
तीसरा, एक यथार्थवादी नागरिक बने,
मतलब
दुनिया बदलने का इंतजार न करें, जो कर सकते हैं वो करें, वोट दें, खबरें समझें, मोहल्ले के मसलों में रुचि लें।
छोटी छोटी भागीदारी भी मायने रखती है।
चौथा, लोकतांत्रिक संस्थाओं की अहमियत समझें और उनके लिए आवाज उठाएं।
अदालतें, चुनाव आयोग, मीडिया, ये हमारे अधिकारों के रखवाले हैं।
और पांचवा, नागरिक शिक्षा का महत्व समझें।
सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि सवाल पूछने, बहस करने, समझने का हुनर,
ये हुनर आज बहुत जरूरी है।
तो क्रिक से मेरे लिए सबसे बड़ा सबक यही है कि लोकतंत्र परफेक्ट नहीं है और शायद कभी होगा भी नहीं।
हाँ, ये इंसानों का बनाया सिस्टम है, इंसानों के लिए खूबियां भी खामियां भी।
शोरगुल वाला, धीमा, निराशाजनक भी हो सकता है, पर शायद यही सबसे अच्छा तरीका है जिससे हम अपनी भिन्नताओं के साथ मिलकर रह सकते हैं।
इसकी इस अपूर्णता को स्वीकार करना जरूरी है।
और मेरे लिए जो बात सबसे ज्यादा असर करती है वो है इसकी नाजुकता।
हाँ, इसे मानकर नहीं चल सकते।
बिल्कुल, इसे लगातार देखभाल, भागीदारी और बचाव की जरूरत है। हमारी उदासीनता इसे कमजोर कर सकती है, ये एक जिम्मेदारी है।
बिल्कुल, और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं।
हाँ जरूर।
क्रिक के नजरिए से सोचें तो क्या हमें राजनीति शब्द के प्रति अपनी सोच बदलने की जरूरत है?
हाँ, अक्सर हम इसे गाली की तरह देखते हैं।
हाँ, या एक गंदे खेल की तरह। पर क्या हम इसे इसकी सारी कमियों के बावजूद एक जरूरी या तक कि सम्मानजनक गतिविधि मान सकते हैं?
एक ऐसी कोशिश जो हमें साथ मिलकर जीने का रास्ता खोजने में मदद करती है, सोचने वाली बात है।
बिल्कुल।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।